ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। विक्रम संवत का नया वर्ष 2082 आपस में शुभकामनाओं का आदान प्रदान करते हुए मनाया गया। 11 लाख पर्यटकों को आकर्षित करने के लक्ष्य के साथ नगरकोट भ्रमण वर्ष 2082 की शुरुआत। छात्र नामांकन अभियान आज से शुरू। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अभियान को सफल बनाने के लिए सभी को किया आह्वान। और संक्रमण को नियंत्रित न कर पाने वाले एंटीबायोटिक के कारण विश्वभर में 30 लाख बच्चों की मृत्यु होने की आशंका। अब समाचार विस्तार से। आज विक्रम संवत 2082 वैशाख एक गते देश भर में नव वर्ष मनाया गया। लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। वर्ष के पहले दिन अधिकांश लोगों ने मंदिरों और मठों में जाकर पूजा अर्चना की। आज सूर्य ने मीन राशि का भोग समाप्त कर मेष राशि में प्रवेश किया है, इसलिए इसे वैशाख संक्रांति अर्थात मेष संक्रांति और वर्ष के सबसे बड़े दिन के रूप में मनाया जाता है। ये प्राचीन काल से चली आ रही परम्परा है। हर व्यक्ति ने आज पिछले वर्ष के सफल और असफल कार्यों का मूल्यांकन करते हुए ये संकल्प लिया कि असफलताएं दोहराई न जाएं और सफलता प्राप्त करने के लिए नई योजनाएं बनाई जाए। आज सुबह से ही लोगों ने नहाकर घर आंगन की सफाई की, मीठे व्यंजन खाए, दोस्तों और रिश्तेदारों से सोशल मीडिया या फोन के माध्यम से संपर्क कर शुभकामनाएं साझा की और नव वर्ष मनाया। दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले नेपाली समुदाय वैशाख एक गते को नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। दोस्तों और परिजनों से मिलने, मंदिरों, उद्यानों और ऐतिहासिक स्थलों पर सामूहिक भोज का आयोजन कर नववर्ष मनाने के दृश्य आज पूरे दिन देखे गए। विद्वानों का कहना है कि विक्रम संवत में सौर मान और चंद्र मान का समन्वय है। कलियुग के शुरू होने के 3046 वर्ष बाद विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। इसी तरह विक्रम संवत की नववर्ष के साथ ही मधेश के प्राचीन मिथिला क्षेत्र में जूड़ शीतल पर्व मनाया गया। वैशाख संक्रांति के दिन शुरू होने वाले इस पर्व के पहले दिन को मैथिल समुदाय मिथिला के निवासी सतुवाइन के रूप में मनाते हैं। दो दिन तक चलने वाले इस पर्व के पहले दिन को सतुवाइन कहा जाता है, जो मैथिल परम्परा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। नए वर्ष की शुरुआत और बढ़ती गर्मी के बीच जीवन में शीतलता की कामना करते हुए मनाए जाने वाले इस पर्व के पहले दिन वैशाख संक्रांति पर चना, बादाम, जौ, मक्का, कगनी, गेहूं, चावल और मूंग सहित सात प्रकार के अनाज से बना सत्तू और मिट्टी के बर्तन में शरबत बनाकर कुल देवता को अर्पित किया जाता है। इसके बाद इसे कुल पुरोहित, ब्राह्मण और साधुओं को दान किया जाता है। पहले दिन सत्तू और शरबत का दान देने के बाद इन्हीं व्यंजनों को खाने की ये विधि मिथिला में सतुवाइन कहलाती है। आज भी इसी परंपरा के अनुसार मिथिला में सतुवाइन धूमधाम से मनाया गया। पर्यटन की राजधानी पोखरा में नेपाली वर्ष नववर्ष 2082 का जोरदार स्वागत किया गया। पोखरा के प्रमुख पर्यटन स्थल फेवाताल के किनारे आज स्वदेशी और विदेशी पर्यटकों ने नववर्ष का स्वागत किया। नववर्ष के आगमन के साथ ही पोखरा के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भारी भीड़ देखी जा रही है। नए वर्ष के पहले दिन पशुपतिनाथ मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। नववर्ष के अवसर पर पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन के लिए लाखों भक्तों के आने की उम्मीद के चलते सुबह 3:30 बजे से ही मंदिर के सभी चारों द्वार खोल दिए गए। ये जानकारी पशुपति क्षेत्र विकास कोष के संस्कृत संरक्षण महाशाखा के प्रमुख ईश्वर राज भंडारी ने दी। चूंकि नववर्ष का पहला दिन सोमवार भगवान शिव का दिन भी है, इसलिए पशुपति क्षेत्र में भक्तों की संख्या और अधिक बढ़ गई है। आज से नगरकोट भ्रमण वर्ष 2082 की शुरुआत की गई है। इस विशेष अभियान के तहत नगरकोट काठमांडू घाटी के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल में इस वर्ष 11 लाख पर्यटकों के आगमन का लक्ष्य रखा गया है। नववर्ष के उत्सव के साथ ही इस पर्यटन अभियान को शुरू करने का निर्णय लिया गया। भ्रमण वर्ष का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने कहा कि नेपाल को पर्यटकीय क्षेत्र के रूप में विकसित करने की जरूरत है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने शैक्षिक सत्र 2082 के विद्यार्थी भर्ती अभियान को सफल बनाने के लिए सभी सरोकार वालों से आग्रह किया है। आज से शुरू हुए इस अभियान के शुभारंभ पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अभिभावकों और संबंधित पक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका है जो इस अभियान को सफल बना सकती है। प्रधानमंत्री ओली ने वर्ष 2030 तक सतत विकास के वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सीखने की प्रक्रिया को समावेशी और गुणवत्तापूर्ण बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सभी शैक्षणिक संस्थानों को उत्कृष्ट ज्ञान केंद्रों के रूप में विकसित करना चाहिए ताकि शिक्षा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली की राष्ट्रीय आकांक्षा को पूरा करने का माध्यम बन सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र समृद्धि का एक आधार है, इसलिए गुणवत्तापूर्ण और रोजगारपरक शैक्षिक जनशक्ति के उत्पादन के लिए शिक्षा के सभी क्षेत्रों से जुड़े लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने शिक्षा के सभी सरोकार वालों से इस दिशा में पूरी तरह मेहनत से जुटने का आह्वान किया। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे, ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजी।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ हजुर।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
हे त पनि एनटिसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसी को डे प्याक लिन *14## डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले ने 7 कम्युनिस्ट योद्धाओं को सम्मानित करने का निर्णय किया है। पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर ललितपुर स्थित एमाले के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित सचिवालय बैठक में ये निर्णय किया गया। एमाले के उप महासचिव प्रदीप ग्यावाली ने बताया कि कम्युनिस्ट आंदोलन के विकास और विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले 7 विशिष्ट व्यक्तियों को कम्युनिस्ट योद्धा के रूप में सम्मानित किया जाएगा। सम्मानित किए जाने वाले व्यक्तियों में लाल बहादुर विश्वकर्मा कंचनपुर, रत्न शर्मा न्योपाने मरणोपरांत, वाचस्पति देवकोटा गोरखा, शांता मानवी काठमांडू, सत्यनारायण मंडल सप्तरी, शोभा राम बसनेत दांग, हरिचरण शिवा कोटी झापा शामिल है। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया कि तत्कालीन नेकपा माले और कोऑर्डिनेशन सेंटर के दौरान पार्टी निर्माण में शामिल 34 नेताओं और कार्यकर्ताओं के स्मरणों के को समेटते हुए पुस्तक सेल्टर को सार्वजनिक किया जाएगा। इस पुस्तक में उस समय के दौरान पार्टी निर्माण नेताओं द्वारा जनता के घरों में आश्रय लेने, भूमिगत रहकर महाधिवेशन आयोजित करने और कार्यकर्ताओं द्वारा नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे ऐतिहासिक पहलुओं को शामिल किया गया है। उप महासचिव ग्यावाली ने सरकार परिवर्तन की चर्चा को सत्ता के प्रति आसक्ति मात्र बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी का मुख्य ध्यान जनता की सेवा और देश के विकास पर है। सुदूर पश्चिम और कर्नाली प्रदेश के विभिन्न जिलों में मनाए जाने वाले विश्व पर्व का आयोजन आज काठमांडू में भी हुआ। देवड़ा समाज के आयोजन में नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादी में आयोजित इस कार्यक्रम में सुदूर पश्चिम और कर्नाली से काठमांडू में बसे लोगों ने देवड़ा खेलकर और एक दूसरे को सिस्नु हर्बल पेस्ट लगाकर विश्व पर्व मनाया। समाज के अध्यक्ष नंद कृष्ण जोशी ने इसकी जानकारी दी। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देववा ने कहा कि लोकतंत्र मजबूत होने पर ही भाषा साहित्य कला और संस्कृति का संरक्षण और प्रसार हो सकता है। उन्होंने सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया। विशु पर्व सुदूर पश्चिम नेपाल की एक प्रमुख सांस्कृतिक परंपरा है जिसमें सामुदायिक उत्साह, लोक नृत्य और पारंपरिक रीति रिवाज शामिल होते हैं। वज्र योगिनी माई की यात्रा सांखू में शुरू हो चुकी है। चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन वज्र योगिनी माई को निमंत्रण देने की पूजा के बाद ही यात्रा शुरू होती है। हालांकि औपचारिक यात्रा चैत्र शुक्ल पूर्णिमा से शुरू होती है। नेवारी परंपरा के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी पिछले चैत्र 23 गते से ही सांखू बाजार में चमड़े के जूते पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस यात्रा के दौरान बारिश होने पर भी सांखू में छाता लगाने की अनुमति नहीं है। पूर्णिमा के दिन 33 गते वज्र योगिनी माता सिंघणी व्याघ्रिणी सहित अन्य देवी देवताओं को रथ पर सवार कराकर वज्र योगिनी से साखू बाजार लाया जाता है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि ये जात्रा साखू के आठों टोलों में बारी बारी से आयोजित करने की परंपरा है। इस यात्रा को न केवल साखू बल्कि पूरी काठमांडू उपत्यका की एक विशेष यात्रा के रूप में माना जाता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और स्थानीय संस्कृति का अहम हिस्सा है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोधक क्षमता के कारण आने वाले वर्षों में विश्वभर में 30 लाख से अधिक बच्चों की मृत्यु हो सकती है। ये समस्या विशेष रूप से निमोनिया और अन्य जीवाणु जनित बीमारियों के इलाज में एंटीबायोटिक्स के अप्रभावी होने के कारण उत्पन्न हो रही है। गलत तरीके से एंटीबायोटिक्स का उपयोग, पूरी बुखार न खुराक न लेने या डॉक्टर की सलाह के बिना दवा बंद कर देने जैसे में प्रतिरोध पैदा होता है। ये संकट केवल स्वास्थ्य नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक स्थिरता के लिए भी गंभीर चुनौती है। सतर्कता और वैश्विक सहयोग से ही इस पर नियंत्रण संभव है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। विक्रम संवत का नया वर्ष 2082 आपस में शुभकामनाओं का आदान प्रदान करते हुए मनाया गया। 11 लाख पर्यटकों को आकर्षित करने के लक्ष्य के साथ नगरकोट भ्रमण वर्ष 2082 की शुरुआत। छात्र नामांकन अभियान आज से शुरू। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अभियान को सफल बनाने के लिए सभी को किया आह्वान और संक्रमण को नियंत्रित न कर पाने वाले एंटीबायोटिक्स के कारण विश्वभर में 30 लाख बच्चों की मृत्यु होने की आशंका। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।